मैं आपको पुराने नियम की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ.
Ezekiel chapter 9. It's a small chapter. We'll read the whole thing. Book of Ezekiel chapter 9.
हम Ezekiel की पुस्तक उसके नौवें अध्याय को पढ़ेंगे.
He cried also in my ears with a loud voice, saying, Count them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, six men came from the way of the higher gate, which lied toward the north, and every man a slaughter's weapon in his hand, and one man among them was clothed with linen, with a writer's ink horn by his side. And they went in and stood beside the brazen altar, and the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was to the threshold of the house, and he called to the man clothed with linen, which had the writer's ink horn by his side. And the Lord said unto him, Go there, go to the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and cry for all the abomination that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth, and they went forth and slew in the city. And it came to pass, when they were slaying them, and I was left, and I fell upon my face, and cried, and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceedingly great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, The Lord hath forsaken the earth, and the Lord seeth not. And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, which had the ink horn by his side, reported this matter, saying, I have done as thou commanded me.
May the Lord add his blessings and speak to us from this scripture portion.
Parmeshwar apne is vachan se humse baatein kare.
Here we see a vision that Ezekiel had. We do not know the exact time frame, but it's a very strange vision that Ezekiel had.
हम यहाँ पर एक विचित्र दर्शन को देखते हैं जिसको परमेश्वर दास यहेजकेल ने देखा है. कब नहीं मालूम, लेकिन उसने जरूर देखा.
In the book of Ezekiel, we read many visions, and some are very not very easy to understand.
यहेजकेल के इस पुस्तक में भविष्यवाणी में बहुत सारे दर्शनों को हम देखते हैं, लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल है.
That is the reason why I think we read book of Ezekiel very less, and very less messages we hear from this book, though we should be hearing more from this book.
और शायद इसलिए हो सकता है कि हम यहेजकेल के इस पुस्तक से बहुत कम भाषणों को सुनते हैं, क्योंकि उसे समझना बहुत मुश्किल है.
Many of the things written in this book has already taken place, but some are yet to take place.
इनमें जो बातें बताई गई हैं, उसमें से अधिकतर घटनाएं घट चुकी हैं, और कुछ घटनाएं जो घटने वाली हैं.
About this vision, it's a very simple vision where some six people or six angels are going into the city.
यहाँ पे एक साधारण सा दर्शन है जहाँ पर छह पुरुष या स्वर्गदूत उस नगर की तरफ चल रहे हैं.
And most of them have a deadly weapon, a battle axe in their hand.
और उनके हाथ में एक हथियार है.
Chapter 2, middle, we find which faces north, each with his battle axe in his hand.
उस दूसरे शब्द में हम वचन में हम पढ़ते हैं कि छह पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए.
Then we find one person among them was clothed with linen and had a writer's ink horn at his side. And he had something, an ink horn with which he can do marking.
और उनके बीच में एक सज्जन था जो एक सन का वस्त्र पहने हुए कमर में लिखने की दावत बांधे हुए खड़ा था.
And in verse 4 we find he is getting an instruction, go and mark on the forehead all those who sigh and cry over all the abominations that is done in Jerusalem.
उसके चौथे वचन में पढ़ते हैं किस प्रकार से उस सन के वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को आदेश था कि वो सब मनुष्य जो घृणित कार्य करते हैं उनके माथों पर चिन्ह लगा दें.
After he went, the others were told, go after him, and anybody who doesn't have the mark, kill them.
और जब ये व्यक्ति को आगे दी गई थी तो उनके पीछे बाकी लोगों को बताई गई थी कि जिनके सर पे या माथे पे वो चिन्ह नहीं है उन सबों को आप मार डालें.
In other words, anybody who is not crying and sighing over the abominations, kill them instantly.
इसका मतलब ये इस प्रकार समझ सकते हैं जो उस घृणित कार्य के ऊपर दया दुख नहीं दर्शाते उनको तुरंत मार डालो.
And after the slaughter, we find only Ezekiel was left.
हम देखते हैं इतने मार धाड़ के बाद सिर्फ यहेजकेल बचता है.
Ezekiel felt very bad about it.
और यहेजकेल को बहुत खराब लगता है.
He said, Lord, will you kill all the people because of their sins?
और पूछता है यहोवा से क्या तो सबको मार डालेगा क्योंकि उन्होंने पाप किया है.
Lord says, because of their iniquity, because of their sin, I am not going to spare any one of them.
और प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि उनके घृणित कार्यों के कारण मैं किसी को नहीं बचाऊंगा.
The judgment is surely going to come. That's what the Lord says.
और परमेश्वर कहते हैं कि न्याय उनके ऊपर आएगी.
We know this world is reserved for the judgment of God.
हम जानते हैं कि ये संसार को परमेश्वर के न्याय के लिए सुरक्षित
रखा गया. In the book of 2 Peter, we find it written that the whole world is waiting for the judgment of fire from God.
पत्रस के दूसरे पत्र में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से सारा संसार का न्याय उस अग्नि से होगा.
But we know we are living in the period of grace, and the grace of God is shown upon us, and we have a way of escape.
लेकिन हम जानते हैं कि हम अनुग्रह के इस काल में जी रहे हैं और उस अत्यंत भीषण मौत से हम बच सकते हैं.
I want to speak to you about 4 things in this chapter which I found interesting.
यहाँ पे इस अध्याय में 4 ऐसी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ.
Those 4 things we may be able to find some spiritual lessons that we can apply in our life.
और उन 4 बातों से ऐसे आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है.
Here we find one thing that the people were given judgment and we don't find much time given to them to repent.
हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य यहाँ पे इनके ऊपर न्याय आती है और उनको पश्चाताप करने का समय नहीं मिलता.
If you want to see the background of this chapter, you can find in the previous chapter how the entire city of Jerusalem was filled with all kinds of abominations.
यदि इसके पृष्ठभूमि को आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले अध्याय में पढ़ेंगे कि यरूशलेम में किस प्रकार से हर एक घृणित कार्य से वो भर गया था.
Idol worship was rampant in the city.
वहाँ पे मूर्ति पूजन बहुत अधिक चलती थी.
And we find in the temple itself, idols are kept.
और हम देखते हैं कि परमेश्वर मंदिर में भी मूर्ति रखे गए थे.
Abominable idols right inside the temple. That's what we find in chapter 8.
और इसलिए 8वें अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार से घृणित कार्य करने वाले उन मूर्तियों को परमेश्वर के मंदिर के भीतर रखा गया.
And that is why the judgment of God is coming upon these people.
और इसलिए परमेश्वर का न्याय इन लोगों के ऊपर आता है.
We find an immediate fulfillment of this because the foreign kings, Nebuchadnezzar and his army came, and great slaughter was done. As that was a fulfillment of what has happened in this chapter.
और हम देखते हैं कि इस अध्याय में जिस न्याय के बारे में बताई गई थी राजा नबूकदनेस्सर अपने सैनिक के साथ आकर वहां पर लोगों को खत्म करता है.
But normally God gives time for people to repent.
लेकिन साधारण ढंग से देखा जाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को समय देता है कि वो पश्चाताप करें.
And God speaks to them and God gives them warning and if they don't heed, then the punishment comes.
और साधारण तौर से देखा जाता है कि परमेश्वर मनुष्य को चेतावनी देता है, समय देता है, नहीं तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर बरसता है.
Here we find people were, you know, one person was going with an ink horn and he's putting a mark on people.
हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति एक 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 दवात लेके चलता है और लोगों के माथे पे वो चिन्ह लगाता है.
I was reminded when we go for voting, we get a mark on our finger.
हम जानते हैं कि जब हम वोट डालने के जाते हैं तो हमारे उंगलियों पर एक निशान लगाया जाता है.
And it is put, I think the idea is that nobody should go and vote a second time same day.
तो इसलिए डाला जाता है कि आप में से हम में से कोई वापस उसी दिन जाकर कर वो वोट ना डालें.
But you know, some people know how to even remove it.
लेकिन कुछ लोग जानते हैं किस प्रकार से वो काले चिन्ह को उंगलियों से निकाल दें.
They have a technique. They apply something before they do that thing. You know, you can remove the stain.
और लोग इस प्रकार से इसको सीख गए कि किस प्रकार से उस चिन्ह को लगाने से पहले ही आपने उंगलियों में आप कुछ लगा लो ताकि बाद में उस चिन्ह को आप निकाल सकें.
But in the Bible, you see, we can see something about marking on people right from the first book until the last book.
हम सबसे पहले पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक तक देखते हैं बाइबल में कि किस प्रकार से मनुष्य के ऊपर चिन्ह लगाया जाता है.
Some signs are bad, some are good.
कुछ ऐसे निशान हैं जो अच्छे हैं, कुछ ऐसे निशान हैं जो खराब हैं.
I want to remind you, you know this. I just want to bring to you a notice, something that all some of those marks that came to my mind.
ऐसे कुछ चिन्ह या निशान मेरे दिमाग में आए उन आपके सामने रखता हूँ.
The first mention about it is in Genesis chapter 4.
हम सबसे पहले उस निशान या चिन्ह के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक चौथे अध्याय में.
And it was put on a person, a very unlikely person, Cain himself.
और हम देखते हैं कि कैन के ऊपर वो चिन्ह लगाया गया था.
Genesis chapter 4 and verse 15. And the Lord said to him, therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him.
15th वचन. इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे सात गुना बदला लिया जाएगा. और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उस पाकर मार डाले.
Cain committed a very heinous crime.
देखते हैं कैन ने बहुत ही घृणित कार्य को किया.
Even when we read it, we shudder at what he did.
और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हम भी बड़े थरथरा जाते हैं.
He killed his own brother.
उसने अपने खुद के भाई को मार डाला.
And then God gives him a punishment.
और फिर परमेश्वर उसके ऊपर अपनी न्याय को लाता है.
And then he says, my punishment, verse 13. And Cain said to the Lord, my punishment is greater than I can bear.
और तब कैन यहोवा से कहते, मेरा दंड सहने से बाहर है.
And the Lord has driven him out this day from the face of the ground.
और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस भूमि से उसको निकाल दिया.
I shall be hidden from your face. Verse 14.
और 14 वचन में पढ़ते हैं कि मैं तेरी दृष्टि से भटक जाऊंगा, अड़ जाऊंगा.
I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it shall be that anyone who find me will kill me.
और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा.
You think who could have found Cain? There was, you know, not many people on the face of the earth at that time.
उस जमाने में बहुत सारे लोग संसार में नहीं थे.
He must have been thinking later on when the, you know, children are born to his parents again, when the population increases, he finds a sure danger that somebody will take vengeance upon him.
और उसको मालूम था कि जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती जाएगी कोई ना कोई उसके ऊपर बदला लेगा.
And he mentioned to the Lord, anyone who finds me will kill me.
और कहता है परमेश्वर की, जो कोई मुझे पाएगा मुझे मेरी हत्या करेगा.
And then the Lord puts a mark on him.
और हम देखते हैं तब परमेश्वर उसके ऊपर एक चिन्ह लगाता है.
We do not know what kind of mark it was, and we don't know where it was put.
हम नहीं जानते ये किस प्रकार की चिन्ह थी और कहाँ पर लगाई गई थी.
But this is a mark put by God Himself.
लेकिन ये ऐसा एक चिन्ह था जिसको परमेश्वर ने खुद उस पर लगाया.
Anyway, it was very effective. We know nobody killed Cain.
लेकिन बहुत ही अच्छी चिन्ह थी हम देखते हैं क्योंकि किसी ने कैन की हत्या नहीं की.
Do not kill this man. That's what that sign meant.
और वो चिन्ह का अर्थ यही था कि इस व्यक्ति को मत मारना.
And in the sign that we find in Ezekiel is also a similar sign.
और यहेजकेल में भी ऐसे एक चिन्ह को हम पढ़ते हैं.
If anybody has this mark, do not harm this person. Do not kill this person. That is what the mark meant.
और उस चिन्ह का मतलब ये था कि यदि किसी व्यक्ति पर ये चिन्ह है उसको मत मारना.
You know, in the Bible we also find some houses were marked with blood. So the angel of destruction will not enter there.
हम बाइबल में पुराने में भी पढ़ते हैं किस प्रकार से कुछ घरों पर उस लहू या उस खून का चिन्ह लगाया गया था ताकि घात करने वाले स्वर्गदूत उसके ऊपर से चले जाएं.
Exodus chapter 12 we find you know the blood of the Passover lamb should be applied on the doorpost.
और निर्गम के पुस्तक से 12वें अध्याय में पढ़ते हैं किस प्रकार से फसह का जो मेमना का जो खून था उसको उस दीवार पर लगाया.
And just like what happened in Jerusalem in Ezekiel's time, the angel of destruction will come But if he see the blood, he will not enter that house.
और एजकेल के पुस्तक में यही पढ़ते हैं कि घात करने वाला स्वर्गदूत वहाँ पर आएगा, लेकिन यदि घर पर वो चिन्ह है तो वो घुसेगा नहीं.
That sign, house with the sign, is a safe house.
और क्योंकि वो जिस घर पर वो चिन्ह लगा है, वो बचा जा सकता है.
Telling us how we are safe in the blood of the Lord Jesus is applied, how we are safe in the Lord Jesus Christ.
इस बात को बताता है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का खून का चिन्ह हमारे ऊपर है, तो हम सुरक्षित हैं.
In the book of Revelation, we find many other very dangerous marks.
प्रकाशित वाक्य में भी ऐसे बड़े खतरनाक चिन्ह को हम पढ़ते हैं.
Mark of the beast.
हम उस चिन्ह को पढ़ते हैं जो
Revelation chapter 13 and verse 16.
Prakashit Vakya 13, uska 16.
He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their forehead, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast. Or the number of his name.
13वां अध्याय उसका 16वां वचन. उस छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ के से जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन ना कर सके.
This is something that will take place during the tribulation time.
यहाँ पर उस पशु के छाप के बारे में पढ़ते हैं कि जो आखिर के दिनों में होगा जब पीड़ा से होकर गुजरेंगे.
You know, when this was written long time back, many people would have wondered how this is going to be implemented, how this is going to be practiced.
जब ये लिखा गया था बहुत हजारों साल पहले, तब लोग सोचते होंगे कि किस प्रकार से इसको पूरा हो सकता है.
How can anybody stop another person from buying and selling?
कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खरीद फरोख्त करने से बचा सकता है.
Now we are living in the computer age. We know this is very much possible.
और आज हम कंप्यूटर के युग में जीते हैं और हमें मालूम है ये मुमकिन है.
But it is very easy to identify people with computer chips and very easy to implement this thing.
और इससे जिनके अंदर कंप्यूटर के चिप होंगे उनको पहचाना जा सकता है और इसको ये कार्य हो सकता है.
We also find in this book another group of people not having this mark.
हम इस पुस्तक में दूसरे ऐसे झुंड को देखते हैं जिनके ऊपर ये चिन्ह नहीं है.
On their forehead there is the name of God.
और उनके माथे पर परमेश्वर का नाम लिखा है.
And they are safe from the other group of people who have the mark of the beast.
और उस पशु का जो छाप है उन लोगों से ये लोग सुरक्षित हैं.
These are the things that is going to take part in the future, so we don't have to worry about it much.
और इसलिए भविष्य में ये सारी बातें घटनाएं घटने वाली हैं, हमें इनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना.
I wanted to read one verse from Galatians chapter 6 and verse 17.
हम गलतियों के पत्र 6 और 17 को देखेंगे.
Galatians 6 and verse 17. For from now on, let no one trouble me, for I bear in my body the marks of Lord Jesus.
Galatians 6 and verse 17. आगे का कोई मुझे दुख ना दें, क्योंकि मैं यीशु के दागों को या चिन्हों को अपने देह में लिए फिरता हूँ.
The Lord Jesus had the marks on his body.
हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शरीर में भी वो चिन्ह थे या दाग थे.
The nail marks and the mark of the spear.
हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाले से छिदा हुआ वो चिन्ह और हाथों और पैर पे उस कीलों का चिन्ह.
We find Apostle Paul suffered many things for the name of the Lord Jesus.
हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत दुख उठाया.
We find how he was beaten with a whip and how he was stoned. Many physical trouble he went through, how the Lord preserved them alive from all those things.
और पौलुस के ऊपर किस प्रकार से मानसिक या शारीरिक क्लेश या पहुंचाया गया था, तकलीफ पहुंचाया गया था, फिर भी उसमें से वो सुरक्षित निकलता है.
But he says, I am bearing in my body the marks of the Lord Jesus Christ.
लेकिन अब वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह को, निशान को मेरे शरीर में लेता हूं.
He considered it a great honor to suffer for the Lord Jesus.
और प्रभु यीशु मसीह के लिए इस प्रकार से इस निशान को लेकर घूमना फिरना बहुत ही गर्व की बात समझता था.
I want you to come back to Ezekiel chapter 9.
हम ये एजकेल की पुस्तक 9वें अध्याय की ओर लौटें.
I will read verse number 4.
और चौथे वचन को हम देखेंगे.
And the Lord said to And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done within it.
और यहोवा ने उससे कहा कि यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं उनके माथों पर चिन्ह लगा दे.
And to the others he said, in my hearing, go after him through the city and kill.
तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ.
Do not let your eye spare, nor have any pity.
किसी पर दया ना करना और ना कोमलता से काम करना.
A man with a ink and a ink horn is going to mark people in the city.
हम देखते हैं किस प्रकार से एक सन का वस्त्र पहने हुए कमर में लिखने की दवात बांधे हुए लोगों के ऊपर चिन्ह लगाता
है. After he finishes marking, the entire population of the city will be in two groups. People with a mark, people without a mark.
और जब ये व्यक्ति उस शहर में घूमेगा फिरेगा तो ऐसे कुछ लोगों के जिनके ऊपर चिन्ह है, ऐसे लोग होंगे जिनके माथे पे कोई चिन्ह नहीं.
Who are the ones who have the mark?
ये कौन से लोग हैं जिनके माथे पे वो चिन्ह है?
Those who cry and sigh over the abominations that is in the city.
वैसे लोगों के ऊपर वो चिन्ह होगा जो सांसें भरते हैं और दुख उठाते हैं उस शहर के घृणित कार्यों को देखकर.
Now this is something that happened in the Old Testament times.
और ये पुराने युग में हुआ था.
But as we look around us, our times are also not very different from it.
लेकिन आज हमारे वर्तमान का समय भी उस पुराने समय से कोई भिन्न नहीं.
We find wickedness is on the rise all around the world.
हम देखते हैं किस प्रकार से क्रूरता और इस प्रकार की मलिनता है संसार में बढ़ती जा रही है.
People are progressing in many areas, in technology, in many areas, but the people are not getting any better with all this.
हम देखते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्य विकास कर रहा है लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा है.
The Lord Jesus said about the people when he comes, his second coming, he said, on account of increase of wickedness, the love of many people will wax cold.
प्रभु यीशु मसीह खुद अपने दोबारा आगमन के समय के बातों को बताते हुए कहते हैं कि जब वो लौटेंगे तो इस परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाएगी क्योंकि वो इतने ज्यादा घृणित कार्य करते हैं.
People grew increase in their wickedness.
देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से ऐसे घृणित कार्यों में बढ़ता जा रहा है.
And on account of that, love will wax cold. Love for one another, love for gold, love will be a rare commodity in the end times.
पवित्र शास्त्र में कहते हैं इन सब कार्यों के कारण प्रेम की कमी पाई जाएगी और लोग एक दूसरे से बैर रखेंगे.
I do not need to tell you about the increase of wickedness and terrorism around the world, how dangerous it is even traveling around the world because of terrorism.
मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खुद समझते हैं आतंकवाद का किस प्रकार से संसार के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण है.
People are becoming more and more wicked.
लोग बहुत ही खराब होते जा रहे हैं.
God has given people lot of facilities, lot of technologies, but they are misusing it and using it for wickedness.
परमेश्वर ने मनुष्य को टेक्नोलॉजी दी है, विकास के बहुत सारे गुण कार्य दिए हैं, लेकिन मनुष्य इन सब का उपयोग आतंकवाद या घृणित कार्यों करने में कामयाब हो रहा है.
If you are aware of it, there is a reason to sigh and cry over it.
और यदि आप और मैं इससे वाकिफ हैं, तो हम इनके ऊपर दुख जताना जरूरी है.
We should not be like the ostrich hiding our head in the sand and say, no, I don't know what is happening around us.
हम उस पक्षी ऑस्ट्रिच के समान ना हो जो अपने सर को उस बालू में छुपा लेता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे चारों तरफ क्या है.
Because these sort of things are happening all around us.
क्योंकि ये सारी घटनाएं हमारे चारों तरफ घट रही हैं.
I was looking at the life of the Lord Jesus, who is our model in all these things.
मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था जो हमारे सबसे उत्तम उदाहरण है.
I found the Lord Jesus sighing, seeing the situation around him on two occasions.
मैं यीशु मसीह को देखता हूँ किस प्रकार से दो ऐसे विशेष अवस्थाएं थी जब वो दुख जताते हैं या बताते हैं.
He saw the unbelief of people and he sighed.
लोगों के अविश्वास को देखकर वो दुख जताते हैं.
He saw the sickness of people and he sighed.
उन्होंने लोगों के रोग या तकलीफ को देखकर वो सांस या आगे
बढ़ते हैं. He also cried with the people who were sorrowing.
और जो दुख उठाते थे, जो रो रहे थे, उनके साथ वो भी रोते
हैं. He cried with the people who were crying at the tomb of Lazarus.
लाजर की जो जो कब्र थी वहां पर जो लोग खड़े होकर रो रहे थे उनके साथ यीशु मसीह भी रोते.
एंड When he thought about the slaughter that is going to take place in Jerusalem in a very short while, he cried over Jerusalem.
और जब यरूशलेम के ऊपर जो में जो हत्याएं घटने वाली थी आने वाले भविष्य में उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह रोते हैं.
We have enough reason to cry and sigh over the depravity and the degradation that is happening around us, both inside and outside.
हमारे चारों तरफ अंदर और बाहर ऐसी बातें जो घट रही हैं उसके ऊपर आहें भरने की का समय या दुख उठाने का समय या दुख जताने का समय है.
I don't want to take too much of time, but I want to, I will leave these thoughts with you. You can, like the people in Berea, the Bereans, you can go and verify and say what I say is true or not. You can check it for yourself.
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको जिस प्रकार से बरिया के विश्वासी खोज खबर खोज रखते थे, वैसे आप भी खोज कर खोजबीन कर सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ सही है या नहीं.
You know, I had this book of concordance which I was using, Cruden's Complete Concordance.
मेरे पास एक पुस्तक थी जिसमें आप बहुत सारे वाक्यों को पदों का निकाल सकते हैं, Cruden's के concordance की पुस्तक.
Then my eyesight became less and I found that type to be too small to read.
और मेरी देखने की दृष्टि में कमजोरी आ गई और वो बहुत छोटी उसकी लिखावट थी इसलिए मैं सब पढ़ नहीं पाता था.
I would have gifted it to some young people who can read it, but now everything is available in computer.
मैं जवानों को दे सकता था जो इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन आजकल सब कंप्यूटर में उपलब्ध है.
So easy to search a word with the use of the Bible, which is even your phone, you can search so well.
जो वो बाइबल आपके फोन में है उसमें से आप सारे पदों को निकाल सकते हैं.
For example, if I ask you and with allow you to use your phone and Bible and ask you how many times the word abomination is mentioned in the Bible, you will be able to count and tell me 144 times.
यदि मैं आपसे पूछता हूँ बाइबल में अबोमिनेशन जो अंग्रेजी में जो शब्द है घृणित कार्य उसको कितने बाइबल में लिखे हो तो आप बता देंगे 144 बार लिखी हुई है.
Mostly in the Old Testament.
और ये सब अधिकतर उसमें से पुराण नियम में लिखे हैं.
Why do I mention about this? Because it is mentioned in this chapter.
मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में बताई गई है.
Who sigh and cry over all the abominations that are done within the city.
जो घृणित कामों के कारण सांसे भरते हैं और दुख के कारण चिल्लाते हैं.
There are many things described in the Bible as things that God really hate.
ऐसे बहुत सारे बातें बाइबल में वर्णन किए जिसको परमेश्वर जिससे घृणा करते हैं.
And what God hates, we should also be able to hate.
और जिस वस्तुओं से प्रभु परमेश्वर घृणा करते हैं उससे हम भी घृणा करें.
In the book of Leviticus, there are set foods are mentioned. What food you can eat, what you cannot eat.
ले व्यवस्था की पुस्तक में ऐसे कुछ खाने की वस्तुओं के बारे में बताई गई जिसको आप खा सकते हैं जिसको आप नहीं खा सकते.
We hear the saying, one man's food is another man's poison.
इस प्रकार से अंग्रेजी में कहावत है किसी एक का खाना दूसरे व्यक्ति के लिए वो विष है.
If you read that chapter in China, for example, they may not agree with you. Leviticus chapter 11.
यदि लेवी व्यवस्था 11वें अध्याय को पढ़े तो चाइना के लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे.
Any creepy things which creeps with its belly on the ground is an abomination to the Lord.
जो भी वो जो रेंगने वाले जो भी वस्तु है या जीव है वो परमेश्वर के लिए घृणा के कार्य है.
I have been to some part of China. I find it's a delicacy there and they enjoy eating all those things.
और मैं चाइना गया था उनके लिए वो बहुत ही विशेष वस्तु है उसको खाने में उनको बहुत मजा आती है.
Now, if all those things are applicable to the New Testament believers or no, I am not going to say anything about it very now. It's up to each one. You know, the New Testament, the kingdom of God is not food and drink, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit.
हम उसको उन सारे पुराने बातों को नए वर्ग के या नए नियम के विश्वासियों के ऊपर कहूंगा तो सब हम उसको अलग ढंग से समझ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं से नहीं लेकिन धार्मिकता और सच्चाई से बनी हुई है.
If I start a debate on eating pork and all, I think it will take a long time.
यदि मैं आपसे कहूंगा कि पोर्क या सोर को आप खा सकते हैं नहीं तो बहुत समय लगेगा.
But if I read chapter 18, I don't think you will have much disagreement. Leviticus chapter 18.
लेकिन यदि लेविवस्था 18वें अध्याय को हम पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप मेरे साथ देंगे.
In my younger days in home, when we read, used to read it in Malayalam, we would find it very difficult to read it with our parents around us.
तो 18वें अध्याय को जब हमारे पुराने समय में हम अपने माता पिता के साथ बाइबल पढ़ते थे बड़े मुश्किल से उस भाग को हम पढ़ पाते थे.
Because if you read in the KJV, I don't know if you will be able to understand, but Malayalam is very clear. Thou shall not uncover the nakedness of so and so, every verse says the same thing.
और लेकिन उस 18वें अध्याय के यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है किन किन बातों को आप कर नहीं सकते.
He did not answer me. Thou shall not uncover the nakedness of your relatives. That's what it says in that.
वहाँ पे इस प्रकार से बताया गया अपने संबंधियों को अपने लोगों के के नग्नता को आप हटाएंगे नहीं.
If you read that chapter carefully, I'm not reading it now. If you read it carefully, you find it says the moral standard of God.
वहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की जो नैतिक जो जो दर्शन है उसको हम देखते हैं.
Leviticus 18:22
और वहाँ पर हम देखते हैं लेव व्यवस्था 18 उसका 22वां वचन.
इफ यू शैल You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination.
स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना वह तो घिनौना काम है.
144 abominations I told you. I mentioned one is in this verse which we read just now.
और 144 जो घृणित कार्य बताए गए हैं या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उसमें से वो एक शब्द यहाँ पर इस वचन में पढ़ते हैं.
Quite a few verses. Abomination mentioned is about idol worship.
और अधिकतर घिनौने काम के बारे में जो बताई गई है वो मूर्ति पूजन से संबंधित है.
And majority of them, and the remaining portion is describing about the moral issues that people should be careful about.
और बाकी के जो बातें बताई गई हैं अधिकतर वो नैतिक मूल्यों के बारे में है.
Bible calls sin a sin, and there is no cover up.
परमेश्वर का वचन पाप को पाप बताता है और उसको उसको ढकने की कोशिश नहीं करता.
Nobody is given any leeway to say that I don't think it. I thought it was not written in the word. It is very clearly written in the word of God.
और परमेश्वर के वचन में ये पाप यदि पाप है तो उसके बारे में पूर्ण रीति से बताई गई है.
People go wrong not because it is not written. They go wrong because they don't want to do. What is written?
लोग इसलिए गलतियां नहीं करते क्योंकि वहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लोग गलती इसलिए करते हैं कि वो गलती करना चाहते हैं.
Around the world, these sort of things were big shame in the last generation.
पिछले जमाने में या पिछले युग में ऐसे ऐसे कार्य जिनके बारे में वर्णन की गई है बड़ी लज्जा के कारण थी.
Nowadays, all these things are great matter of honor and celebration in many countries of the world.
लेकिन जिन बातों को हमने अभी पढ़ा उसको आज के समय में आज के युग में और बड़े उल्लास के साथ इस बात को मनाया जाता है, गर्व के साथ इस बात को कहते हैं.
In the book of Deuteronomy, it is written, anybody divorce and remarry, it is an abomination.
हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में पढ़ते हैं कि यदि कोई किसी को डिवोर्स करता है और वापस उसके तलाक देता है और वापस शादी करता है तो परमेश्वर का घृणित कार्य है.
इट इज मेंशनड आल्सो इन मैथ्यू चैप्टर 19 इफ अबाउट डिवोर्स एंड रीमैरिज दैट इट इज इक्वल टू फोर्निकेशन.
और मत्ती रचित समाचार 19वां अध्याय पढ़ते हैं कि यदि कोई किसी को तलाक देता है वापस शादी करता है तो वो भी एक घिनौना कार्य है.
It is equal to fornication.
उसको हम पढ़ते हैं कि वो
व्यभिचार
के समान है.
Now this is very clearly in the word of God. Sometimes we don't mention all these things because you know we don't want to offend anybody. But the truth is very clearly written.
अधिकतर इन समय हम इन बातों के बारे में वर्णन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि किसी और को ठेस पहुंचेगा. लेकिन ये बातें सारी पूर्ण रूप से लिखी गई हैं.
I cannot tell you all those 144 mentions of abomination, but if you go through it, you will find these are the things God hates.
लेकिन वो 144 बातें जो घिनौने कार्य के बारे में बताई गई हैं, उनको आपके सामने बताने का समय नहीं है, लेकिन ये सब से परमेश्वर घृणा करते हैं.
God is holy, as we read in Psalm 99 today. God is holy, and God wants His people also to be holy.
जिस प्रकार से भजन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रभु पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने.
And when you see all unholiness happening in the world and among the believers, You have a responsibility to cry about it and to sigh about it and to be concerned about it.
और इससे संसार भर में जब हम अपवित्रता को देखते हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके ऊपर आहें भरें और इसके ऊपर हम दुख दर्शाएं.
I want to read one verse and close. 2 Corinthians chapter 11 and verse 28.
एक पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे.
This is the attitude of Apostle Paul to other believers.
2 Corinthians पत्र 11 उसका 28.
11 and 28. He says there, beside all other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches.
और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है.
Who is weak and I am not weak? Who is made to stumble and I do not burn with indignation?
किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता?
We read about Apostle Paul when he went to Athens. He saw a lot of idols there, and his heart was burning with them.
प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो एथेंस में जाता है, वहाँ पे मूर्तियों को देखकर उसका दुख उसको बड़ा जलता है.
We look around us from tomorrow onwards. You can see all these murtis coming in all shapes, and you can also feel bad about all these abominations like Apostle Paul felt.
जिस प्रकार से हम यदि कल से हम देखना चालू करेंगे, चारों तरफ हमारी मूर्तियाँ भर जाएंगी, और इन बातों को देखकर हमारे मन में बड़ा दुख होता है, जिस प्रकार से पौलुस के मन में हुआ.
Like Paul preached, don't go and stand next to the pandal and preach, you will get into big trouble.
जिस प्रकार से पौलुस ने भाषण दिया, आप उस पंडाल के चारों तरफ जाके भाषण मत देना, बड़े समस्या में फंस जाएंगे आप.
But you know what I want to tell you, whatever is mentioned in the Bible times, it is all going around us also.
लेकिन जो बाइबल के समय में बताई गई थी, वो सारे बातें हमारे चारों तरफ घट रही है.
But Apostle Paul had a daily concern, daily worry about all the churches, and he would pray for them.
लेकिन जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि दिन व दिन प्रतिदिन उनके मन में कलीसियाओं के बारे में बहुत चिंता थी.
Concern is manifested in prayer.
और इन चिंताओं को हम प्रार्थना में तब्दील करते हैं.
And the word of God says such people will be spared. And because when you are neither group, you are either one who is causing the abomination or you are one who is stopping the abomination.
हम इस बात को जान ले के हम दो गुट में से कोई एक गुट में हो सकते हैं. एक झुंड जो इस प्रकार के घृणित कार्यों करता है, दूसरा गुट जो इस प्रकार से घृणित कार्य को नहीं करता.
And those who are praying and those who are concerned and those who are telling the Lord, please do something.
और जो 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 लोग तकलीफ के साथ, दुख के साथ प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु से करते हैं, कहते हैं कि इनमें से हमें बचाएं.
May the Lord speak to us through these words.
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करें.
His name be glorified.
उनके नाम की महिमा हो.